وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. دیکھیں اور زیادہ دھمکی. اور ہم نے کبھی کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے خبردار کرنے والے تھے. مکہ والوں کو ڈرایا جا رہا ہے, کل تک یہ نبی نہیں آیا تھا تو تم بہت جی لیے, کیونکہ کوئی منظر نہیں تھا, اب یہ آ گیا. اور اللہ کی سنت ہے, جس نے کسی کی بات کو سن کر نہ مانا پھر اللہ کی طرف سے پکڑا. ایک تو نبی, یہاں جو لفظ ہے نا منظر, اس کے نیچے لکھ لیجیے منظرون سے مراد اشارہ ہے کہ مکہ والوں تمہیں جیتا جاگتا رسول مل گیا. پچھلی قومیں تو حضرت شعیب سے لے کے آپ کو پتا ہے کہ کسی نبی کی تھی نہیں. شروع میں نے ذکر کیا تھا کہ یہاں ترتیب زمانی ہے, تو آپ دیکھیے کہ یہاں حضرت شعیب کے ذکر کے بعد اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ گیا. تو یہ بات وہیں نوٹ کر لیں جہاں یہ رکوع شروع ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت شعیب کے بعد عربوں میں آئے تھے, عربوں کو بیچ میں کوئی رسول نہیں ملا. تو اللہ کہتے ہیں یاد کرو, اتنے سال والے تو پچھلے نبیوں کی باتیں دہراتے رہتے تھے, تمہیں تو اللہ نے ایک لائیو رسول دیا لیکن تم نے اس کو نہیں مانا. اور دوسری نعمت جو تمہیں ملی ذکر, یہ ہے پیارا قرآن. کسی کبھی دل چاہے تو اس نام کو الگ رکھ لے, قرآن کا نام ذکر, ریمائنڈر, نصیحت, یاد دہانی, یعنی دوسری نعمت قرآن. نبی کیلا بھی آ جاتا نا واللہ دنیا میں تو لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی تھا, اس کا کردار, اس کا اسوہ, اس کا طور طریقہ لوگوں کے لیے کافی تھا. لیکن اس کے ہاتھ میں یہ چمکتی دمکتی خوبصورت کتاب آ گئی, پھر نہیں مانتے. تو پھر یاد رکھو بما کننا ظالمین, پھر ہم ظالم نہیں ہیں. یہ آیت تو پڑھ کے بس ایسے کچھ ہوتا ہے دل کو, اللہ کا اٹل قانون ہے. سورۃ بنی اسرائیل آیت 15 میں بھی پڑھا تھا وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا, ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک رسول نہ بھیج دیں. تو دیکھیے عذاب کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے چھوٹا موٹا عذاب, ایسے ہی پارشل پنشمنٹ کہہ لیجئے, یہ تو آتے ہیں. لیکن عذاب استحصال, سورۃ الانعام میں میں نے اس کی ڈیٹیلز آپ کو لکھائی تھی, اصل سے, اصل کہتے ہیں جڑ کو, اصول, جڑوں سے جب کوئی قوم ختم کر دی جائے اس کو عذاب استحصال کہتے ہیں. تو وہ کب آتا ہے جب قومیں اپنے رسول کی ناقدری کرتی ہیں, اتمام حجت ہو گئی پھر بھی ایمان نہیں لائے, تو فکوتی ادابر القوم الذین ظلموا, سورۃ الانعام آیت 45 میں آیا تھا, پھر تو جڑ ہی کاٹ دی ظالموں کی, باقی رہ گیا یہ قرآن جس کے بارے میں تمہیں سمجھ نہیں آتی. تو وما تنزلت بھی شیاطین, اس قرآن کو لے کر شیاطین نازل نہیں ہوتے. عربوں کے ہاں عام لوگ شاعروں کے بارے میں یہ خیال رکھتے تھے کہ ان کے قابو میں جن ہوتے ہیں اور ان کو نئی نئی اور اچھی اچھی باتیں اشعار کی صورت میں جوڑ جوڑ کر بیان کرتے ہیں. جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو نا بعض مشرکوں نے یہی بات کہنی شروع کر دی اللہ کے نبی کے بارے میں بھی, اسی پہ پگلی باتیں. آیت نمبر 210 سے ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک الزام جو مکہ والوں کی طرف سے لگتا تھا, آپ کو شاعر کہتے تھے, اسی طرح آپ کو کاہن بھی کہتے تھے. اب ان اگلی آیات میں اس الزام کی تردید ہوگی, آئیے دیکھتے ہیں. وما تنزلت بھی شیاطین, اور اس قرآن کو لے کر شیاطین نازل نہیں ہوئے. وما ینبغی لہم, اور ایسا کرنا تو ان کے لائق بھی نہیں. وما یستطیعون, اور نہ ہی وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں. بلکہ انہم عن السمع لمعزولون, بلکہ وہ تو اس وحی الہی کے سننے سے بھی معزول کیے جا چکے ہیں, یعنی کہ وہ اس کو سن بھی نہیں سکتے. تو باقی باتیں تو اس کے بہت بات کی باتیں ہیں. لہذا فلا تدع مع اللہ الہا آخر, تو مت پکارنا اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو, ورنہ فتکون من المعذبین, ورنہ تم ہو جاؤ گے عذاب پانے والوں میں سے. ان آیات میں اس بات کا اظہار ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے. ابھی چند آیتیں پہلے ہی ہم نے دیکھا کہ کتنی شد و مد سے تنزیل میں رب العالمین اور جبرائیل کے ذریعے اور علی قلبی محمد, یہ سب باتیں کر کے آخر میں ہم نے دیکھا کہ اس قرآن کو ذکرا کہا گیا 209 آیت میں, نصیحت. اور جب کوئی چیز نصیحت کے لیے ہوتی ہے تو اس کو ماننا لازمی ہے, اور ماننے کے لیے دل کی بات لازم ہے. لیکن چونکہ یہ قرآن ان کے وقت کے رواج سے میچ نہیں کرتا تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک الزام یہ لگا دیتے تھے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ آپ کے پاس کوئی شیطان آتا ہے اور وہ اس کو پیش کرتا ہے. جب کچھ دن کے لیے وحی کا سلسلہ موقوف ہوا تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ محمد کیا بات ہے، تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا، یعنی نعوذ باللہ جبرائیل کو وہ شیطان کہتے تھے۔ اب بھی انٹرنیٹ پر ایسی تصویریں عام کی جاتی ہیں کہ جس میں غار حرا کے باہر شیطان کو بیٹھا دکھاتے ہیں، اور آج بھی کچھ لوگوں کا گمان کیا ہے اور اسی کی کوششوں میں وہ لگتے ہیں کہ یہ ثابت کر دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ خود نہیں بولتے تھے، فرشتہ نہیں آتا تھا بلکہ شیطان آتا تھا۔ تو اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اتنے یقین کے ساتھ یہاں رد کر دیا کہ وہ تو اس کو کر ہی نہیں سکتے، بلکہ وہ تو اس کو سننے سے بھی معزول ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا لمعزولون، معزول کی جمع، اردو میں بھی بولتے ہیں نا کسی کو معزول کر دیا، عزل اس کا، عزل اس کا روٹ ہے، یعنی کسی کو اس کی جاب سے ہٹا دینا، کسی کو لے آف کر دینا۔ پہلے شیاطین آسمانوں تک جا کر باتیں سنتے تھے، فرشتوں کو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے تو پھر یہ کچھ نہ کچھ سنتے، اور اس کے بعد پھر ان میں سے کوئی ایک نیچے سے دوسرے کو کہتے کہتے کاہنوں کے دلوں میں یہ باتیں ڈالتا تھا۔ لیکن جب قرآن پاک کا نزول شروع ہوا تو اس وقت پھر پہرے لگ گئے۔ یہ سب کچھ ہم سورت جن میں پڑھیں گے کہ اب تو وہاں جاتے ہیں تو ہمیں اوپر سے شعلہ پڑتا ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو جھنجھوڑا ہے کہ دیکھو تمہیں یہ قرآن پڑھ کے لگتا ہے کہ یہ شیاطین کی کلام ہے۔ اب دیکھیے کہ ایک کلام کیا ہوتا ہے، میں آپ کے ساتھ بولتی ہوں نا، یہ میرا کلام ہے، آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بات کرتے ہیں وہ آپ کا کلام ہے۔ کیا کلام کسی انسان کے اندر کی خبر نہیں دیتا؟ آپ اس کو اس طرح سے سمجھیے جیسے بھاپ نکلتی ہے، کہیں پانی ابل رہا ہو تو اس کی بھاپ نکلے، دودھ ابل رہا ہو اس کی بھاپ ہو، آپ دال ابالتے ہیں، کیا ہر ابال کی اسمیل میں فرق ہوتا ہے؟ آپ گھر میں گھستے فوراً بتا دیتے ہیں آج کیا پکا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کلام کو، جو باتیں ہیں اس کو بھاپ محسوس کریں، تو یہ قرآن کا جو پیغام تھا، جو اللہ کے نبی کی زبان سے موتی جھڑتے تھے، کیا یہ شیطانوں کی بھاپ ہوگی؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی قرآن کا پیغام بتا رہا ہے کہ یہ شیطانوں کا نازل کردہ نہیں، اور کیا شیطان لوگوں کو اتنی خوبصورت باتیں بنائیں کہ وہ بالوالدین احسانا، اور وہ یہ کہیں گے کہ فحش اور منکر چھوڑ دو؟ ان کو اتنی عقل نہیں ہے کہ اس قرآن کی نفرت میں یا اس چڑ میں اتنے آگے سے بڑھ گئے کہ ناممکن بات کی بات کرتے ہیں۔ تو لہٰذا عربوں کا جو یہ خیال تھا کہ شاعروں کے پاس جو ہیں وہ جن ہوتے ہیں، اور وہ ان کے ذریعے سے اچھی اچھی باتیں ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں اور وہ اس کو لوگوں میں پیش کرتے ہیں۔ اور جس دور میں یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، جب نیا نیا اللہ کے نبی پہ کلام آیا، تو مکہ والوں کو یہی گمان لگا کہ شاید آپ بھی اسی طرح سے وقت کے رواج کے مطابق یہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا بالکل نہیں ہے۔ سورۃ الرحمن کی آیت 15 میں بھی آتا ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور اس نے پیدا کیا ان جنات کو آگ کی لپٹ سے۔ تو گویا کہ فرشتے کی طرف سے قرآن کا لایا جانا اور شیطان کی طرف سے اس کو نہ ہونا ثابت کر کے یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک محفوظ کلام ہے، اور اس کلام کی اصل کیا کہ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ۔ دیکھیں جب قرآن ہمارے لیے ذکرہ بنتا ہے نا، تو ہماری زندگی سے شرک نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات بتا کر کہ وہ نصیحت جو پیغمبر کرتے تھے، یا وہ نبیوں کا کردار جو خود ان کا اپنا تھا، یہ سب کچھ اس بات کا گواہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے اترا ہے، جس کے سوا کوئی اور لائق نہیں ہے۔ خوشبو سے پہچانا جاتا ہے نا کوئی بھی کام، پھول ہوگا تو اس کی خوشبو ہوگی، کوئی گندگی ہوگی تو اس کی بدبو ہوگی، قرآن سے تو خوشبو آتی ہے۔ تو لہٰذا اس قرآن کو دیکھو اور پھر سوچو کہ یہ اندر سے کتنا خوبصورت ہوگا۔ تو یہ شیطان تو اتنی پیاری باتیں نہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیٹینک ورسز نہیں ہے، یہ رحمان کا کلام ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت 88 میں بھی یہی چیلنج ہم پڑھ چکے کہ قل لئن اجتمعت الانس والجن علی یات بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ، کہ اگر تم سب انسان اور جن مل جاؤ اور اس قرآن جیسا کوئی قرآن لانا چاہو تو تم نہیں لا سکتے۔ سورہ بقرہ میں کیا پڑھا تھا، وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، تو گویا کہ جو چیز اچھی ہوتی ہے نا اسی کی کاپیز بنتی ہیں، اسی کے بارے میں لوگ نقلیں مارتے ہیں۔ تو قرآن تو اتنا پیارا ہے، اور سب سے بڑی بات دیکھیے کہ اس قرآن کو تو پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا گیا، تو یہ شیطان کا کلام کیسے ہو سکتا ہے نعوذ باللہ۔ سورۃ ہجر آیت 17 اینڈ 18 میں بھی آتا ہے وحفظناہ من کل شیطان الرجیم، हमने इसकी हिफाजत की हर शैतान रजीम से, हाँ मगर इल्ला मन इस्तरक़ समा, जो समात को चुरा ले, फिर फत बाहु शिहाब व मुबीन, उसके पीछे एक खुला शोला जो है वो आ जाता है। सूरज जिन आयत 8-9 में आता है, व अन्न लमसन समाओ, बेशक हमने आसमान को छुआ तो हमने पाया भरा हुआ है वो चौकीदारों से। मतलब ये है कि आज कुरान की हिफाजत पर बहुत ज़्यादा गार्ड रखी हुई अल्लाह ताला ने, तो लिहाजा करो क्या। अब यहाँ से कहानत की बात है। देखिए, किसी को ये कहना कि वो हमें मुस्तकबिल के हालात बता सकता है, इसको कहानत कहते हैं। आज के दौर में आप इसको कह सकते हैं पामिस्ट्री। अरबों में ये चीज़ आम थी, और वो यहाँ शिर की एकदम आयत आती है ना, तो समझ नहीं आती कि इस आयत का यहाँ मज़मून क्या था। मज़मून ये है कि अल्लाह के नबी से ये तवक्को रखना कि तुम्हारे काहिनों और ज्योतिषियों की तरह आने वाले वक्त की तुम्हें खबरें बता देंगे, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। अल्लाह के नबी का पैगाम बहुत अमल वाला था, तो लिहाजा यहाँ शिर्क की बात करके फ़ला तदु मा अल्लाहि इलाह नाहर, दूसरों को अल्लाह का शरीक न बनाओ, वरना क्या होगा, फतकून मिनल मुअज़्ज़बीन, अजाब वालों में हो जाओगे। अगर सिर्फ इस एक आयत को आप पेश करें लोगों के सामने जो शिर्क करते हैं, तो जवाब क्या है उनका कि देख लो, जो भी शिर्क करेगा उसको अजाब ज़रूर मिलेगा। आज के दौर में हमारे यहाँ कहानत की अमूमी शक्लें कौन सी हैं? किसी को हाथ दिखाना, ये हफ्ता कैसा गुजरेगा, आपके सितारे जो हैं वो किधर हैं, क्या बोलते हैं, गर्दिश में हैं, कहीं नहीं है, ये सब चीज़ें इस्लाम इसको पसंद नहीं करता। कोई किसी काहिन के पास गया, उसकी बात पेश की सिर्फ उसको अपनी, तो उसकी 40 दिन की इबादत कबूल नहीं, और अगर फरमाया कि उसकी किसी बात पर ईमान ले आया, तो गोया कि उसने उस शरीयत का इनकार कर दिया जो कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देकर भेजा गया। तो लिहाजा इन तमाम चीज़ों से अपने आप को बचाना है। सूरत के आखिर में अल्लाह ताला हमें उन तमाम चीज़ों से पाक करना चाहते हैं कि जो हकीकत में आज हमारी उम्मत को अछूत की तरह लगी हुई है। बड़े बड़े अखबारों में ऐसे ऐसे मैगज़ीन और फिल्मी सफ़े और जो भी चीज़ें होती हैं वो तो हैं, लेकिन ये जो किस्मत का हाल मालूम करना और वक्त से पहले किसी चीज़ का जानना और उसकी कोशिश करना, इस्लाम इसके बारे में बहुत दो टोक बात करता है। इसके बाद बड़ी दिलसोज आयत है, आज आप अपने ऊपर लेकर ऐसे पढ़ें जैसे ये आज नाजिल हो रही है। फिर बताऊँगी कि अल्लाह के नबी पर जब उतरी थी तो क्या था। आयत क्या है 2:14, वन ज़िर शीरतक अलअक़रबीन, और ख़बरदार कीजिए अपने करीबी रिश्तेदारों को। 3 नबवी में ये आयत नाजिल हुई। पहली आयत क्या थी, इक़्रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। फिर उसके बाद सूरत मुद्दसिर का पैगाम भी कुछ इसी किस्म का था कि क़ुम फ़ानज़िर। 3 साल हो चुके थे आपको नबूवत का दावा किए हुए, और उसके बाद अब ये आयत उतरती है कि अब अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए। पहली लफ्ज़ देखिए, अनज़िर। आप सब इस वक्त सबको भूल जाएं, सिर्फ और सिर्फ अपने अशीरे को जहन में रखें। और अशीर कौन होता है आपको पता है, पीछे लिखाया हुआ है आपको, अशीरा कुंबा, जैसे हम कहते हैं ना ख़ानदान, बिरादरी, फर्स्ट फैमिली, सेकंड फैमिली, तो अशीरा अशर से 10, यानी जिसको एक्सटेंडेड फैमिली कह सकते हैं आप, कज़न्स, और कज़न्स के आगे नस्लें, औलादें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शीरा कौन था, बनू हाशिम और बनू अब्दुल मुत्तलिब। पहली बात है कि जब कह जो दिया था कि सबको बताओ, तो क्या उसमें शीरा नहीं आया था, आया था, लेकिन यहाँ फितरत का असूल बता दिया कि इंसान जब किसी बात को अपने करीबी लोगों से शेयर करता है और करीबी लोगों की सपोर्ट उसको मिल जाती है, तो हेल्पर्स मिलते हैं, बाहर जाके बात करना आसान होता है। जो बंदा भी अपने घर और अपने ख़ानदान से झगड़ रहा है, उनसे नहीं निपट पा रहा, बाहर कैसे बात जाएगी। दूसरी वजह यह कि मक्का में कबायली मुआशरत थी, जिसको आप कहें ट्राइबल मेंटेलिटी थी, कोई बड़ी बड़ी ब्रॉड हुकूमत नहीं थी, कबीलों का साथ देते थे ताकि मुश्किल में हमारे कबीले काम आए, ये बात थी। तो आप ये कह लीजिए कि वो एक किस्म की ढाल थी कबीला उनके लिए। अब अल्लाह के नबी को जो पैगाम दिया गया था वो आपके कबीले के लिए बिल्कुल नई चीज़ थी। आप अपने ऊपर लें, बिल्कुल आज की डेट लिख के लिखें कि अल्लाह आपको कहते हैं वानज़िर। पहली बात है, देखिए अनज़िर, ये नहीं कहा कि अब शिर, दीन का मिजाज नुज़ुर वाला है। हाँ, नुज़ुर देने के बाद जब लोग चलना शुरू हो जाएँ तो फिर बशीर। नबी सल्लम का नाम क्या है, नज़ीरम व बशीरा, या बशीरम व नज़ीरा, तो पहला हुक्म डराने का। लोग कहते हैं क्यों डराते हो, इसलिए कि लोग निडर हैं। जब लोग डर चुके होते हैं फिर उनको अपनी नेकियां कम लगती है, सूरह फुरकान के उन लोगों की तरह के दे के भी डरते रहते हैं, फिर उनको तसलियां दो, नहीं अल्लाह ताला आपकी नेकियों की कदर करेगा। तो माशरा तो पहले ही हवा के रुख पे जा रहा है और उनकी तो ज़िंदगी अपनी मर्जियों में जा रही है, ऊपर से आप और खुशखबरियां भी दे दें कि ये कर लो तो इतना सवाब और आपको तो जन्नत मिलनी और आप तो मरहूम और मजबूर हैं, तो फिर वो क्यों मानेंगे। तो यहाँ कहा कि अपने रिश्तेदारों को तुम डराओ, उनकी तरफ चलो। और आप देखेंगे कि ये सूरत अपनी छोटी छोटी आयतों और इस तरह से एक, जिसको आप कहेंगे एक हुसन है इसमें, बिल्कुल एक खुतबा है। शुरू में कहानियाँ सुनाई और अब कहानियों के बाद खुद क्या करना है वो चीज़ सामने रख दी गई। और जब ये सूरत नाजिल हुई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, रिवायत में आता है कि आपने हज़रत अली को एक दावत का अहतमाम करने का हुक्म दिया, खाने की दावत पे बुलाया। अब आप लोगों को भी यहाँ टिप्स मिलती जाएंगी ना कि आपने क्या करना है। हज़रत अली आप ही के ज़ेरे किफ़ालत थे और आपके साथ ही रहते थे, यानी गोया के घर के बंदे थे। आपने तमाम बनु हाशिम को खाने पर मदऊ किया। खाने के बाद आपने इन्हें दावत देने के लिए खड़े हुए, जब आप उनको दावत देने के लिए खड़े हुए क्या हुआ वो मैं आपको अलग सुनाती हूँ कि आपने दावत कैसे देनी है। लेकिन उन्होंने शोर व गुल मचाना शुरू कर दिया और आपकी बात सुने बगैर चले गए। कुछ रोज़ के बाद आपने इनको दोबारा मदऊ फरमाया। हम कहते एक दावत कर तो दिया, और क्या करें। कुछ दिन के बाद दोबारा बुलाया। इस दफ़ा खाने के बाद चारों नाचार वो बैठे रहे, यानी विलिंगली और नॉट विलिंगली बैठे रहे, और आपने इनके सामने एक दावती खुतबा दिया। यहाँ से पता चलता सिर्फ चलते फिरते नहीं सुनाना, कभी बिठा कर भी सुनाना रिश्तेदारों को एक एक प्रोटोकॉल के साथ, जैसे बाकी कामों का इहतमाम करते हैं। तो आइए कहना हम सब सुनाते हैं, हम कहते हैं, हम बांटते हैं, हम देते हैं, नहीं, आपने पूरे प्रोटोकॉल से उनको बिठाया। जब बैठ गए तो अब उनको सुनना पड़ा। ये खुतबा मुख्तसर है मगर आपके अजीम खुतबात में से हैं। और अफसोस की बात है कि आज हम इसको ही नहीं मानते और पीछे दूसरी चीज़ों पर चलते हैं। अब वो खुतबा क्या था इसको सुन लीजिए। चंद हदीसें सिर्फ बहुत सारी हैं लेकिन मैं आपको बाद में रेफरेंस बता दूंगी तो आप लोग ख़ुद भी पढ़ना चाहें पढ़ें। मुस्नद अहमद की रिवायत है कि जब अल्लाह ताला ने यह आयत उतारी तो अल्लाह के नबी सफ़ा पहाड़ पर चढ़ गए और या सबाह कह के आवाज़ दी। ये किस्म का उस दौर में किसी को कॉल करने का तरीका था, क्योंकि माइक्स तो नहीं थे, तो कोई भी किसी का उसको खबर होती ख़ास तौर पर दुश्मन के हमले की तो लोग यही कहते या सबाह, ओ सुबह, हाय सुबह, तो लोग फ़ौरन जमा होते। लोग जमा हो गए, जो नहीं आ सकते थे उन्होंने अपने आदमी भेज दिए, क्योंकि अल्लाह के नबी की सच्चाई का यकीन था, सादक और अमीन है, क्योंकि बहुत बड़ी खबर है। खैर लोग गए। उस वक्त आपने फरमाया ए औलाद अब्दुल मुत्तलिब, ए औलाद फहर, बताओ अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस पहाड़ की पुश्त पर तुम्हारे दुश्मन का लश्कर पड़ा हुआ है और घात में है, मौका पाते ही तुम सबको कत्ल कर डालेगा, तो क्या तुम सब मुझको सच्चा जानोगे। यानी ये इम्पॉसिबल बात थी उस दौर के हिसाब से, लेकिन सब ने एक जुबान होकर कहा हाँ हम आपको सच्चा ही समझेंगे। जब लोगों ने इस बात की गवाही दी तो फिर आपने फरमाया सुन लो मैं तुम्हें आने वाले सख्त अजाबों से डराने वाला हूँ। इस पर अबू लहब मलून ने कहा तू हलाक हो जाए, यही सुनाने के लिए तूने हमें बुलाया था। और इसके जवाब में सूरत तब्बत यदा अबी लहब वाली उतरी। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। हम इतना सख्त रिएक्शन सुन के रोएं और चीखें और के हाय पार्टी ख़राब हो गई, नहीं नहीं चलो लाओ कपड़ों की बातें करें, ड्रामों की करते हैं, छोड़ो ये फिर कभी करेंगे नहीं। मुस्नद अहमद में इस आयत के उतरने के बाद अल्लाह के नबी खड़े हो गए और फरमाने लगे ए फातिमा बिनत मोहम्मद, ए सफ़िया बिनत अब्दुल मुत्तलिब, कौन थी आपकी फूफो, सुनो मैं तुम्हें अल्लाह के यहाँ कुछ काम नहीं आ सकता, हाँ मेरे पास जो माल हो जितना तुम चाहो मैं इसे देने के लिए तैयार हूँ। सही मुस्लिम की रिवायत। कितना इसमें गहरा सबक है, जो मुझसे लेना है आज ले लो। देखिए मरेंगे ना तो हमारा विरसा हमारे रिश्तेदारी ले जाएंगे। आज ज़िंदगी में भी अगर हम उनको देना शुरू कर देना गिफ्ट्स की सूरत में और अच्छे तोहफों की सूरत में, तो हो सकता है कि इस कलाम की जो सख्ती है उनको ज़रा कम लगे। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि शायद के उतरने पर अल्लाह के नबी ने कुरैशियों को बुलाया और उन्हें एक एक करके आमतौर पर खिताब किया, यानी सबके नाम लिए और फरमाया कुरैशियों अपनी जाने जहन्नुम से बचा लो, ए काब के घर वालों अपनी जाने आग से बचा लो, ए हाशिम की औलाद के लोगों अपने आप को अल्लाह के अजाबों से बचा लो, ए अब्दुल मुत्तलिब के लड़कों अल्लाह के अजाबों से बचने की कोशिश करो, ए फातिमा बिनत मोहम्मद अपनी जान को दोजख से बचा लो, कसम अल्लाह की मैं अल्लाह के यहाँ किसी चीज़ का मालिक नहीं, बेशक तुम्हारी कराबतदारी है जिसके दुनियावी हकूक मैं हर तरह अदा करने को तैयार हूँ। ये मुस्लिम के अल्फाज हैं, और बुखारी मुस्लिम में इकट्ठा करें तो उसमें थोड़े से अल्फाज फ़र्क है कि आपने फूफी सफ़िया बेटी फातिमा से ये भी कहा कि मेरे माल में से जो चाहो तलब कर लो। और इसी तरह अबू याला में कि ए कुसै ए हाशिम ए अब्दु मनाफ याद रखो मैं डराने वाला हूँ और मौत बदला देने वाली है, इसका छापा पड़ने वाला है और क़यामत वादा गाह है। इतना सोच अगर आपके अंदर हो कौन ना सुने। आप देखिए अल्लाह के नबी खुद पहाड़ पर चढ़ चढ़ के जा रहे हैं। फिर एक और आपका खुतबा मिलता है इसी में मुस्नद अहमद में आता है, जब आयत उतरी आप एक पहाड़ी पर चढ़ गए, इसकी चोटी पर पत्थर थे, वहाँ पहुँच कर आपने फरमाया बनी अब्द मनाफ मैं तो साफ चुकन्ना कर देने वाला हूँ, मेरी और तुम्हारी मिसाल ऐसे है जैसे किसी शख्स ने दुश्मन को देखा और दौड़ कर अपने अजीज़ों को होशियार करने के लिए आया ताकि वो बचाव कर लें, दूर से ही इसने गुल मचाना शुरू कर दिया कि पहले ही खबरदार हो जाए। मुस्लिम और नसाई की रिवायत है। अब आप खुद सोचिए, हम अपने ऊपर लेके सोचें, इतनी तड़प किसको लगती है। देखिए खुदा न खासे शहर में सैलाब आने वाला हो तो हमारे रिश्तेदारों तो हम बैठे रहेंगे और उनको बेचारों को खबर नहीं। आपने कोई ऐसी मैसेज सुन लिया जो बिल्कुल कोई इंस्टेंट मैसेज था, हर एक को वो नहीं पहुंचता, तो आप बताइए क्या हम बैठे रहते। और भी बहुत सारी रिवायत मौजूद हैं, तफसीर इब्ने कसीर में से आप पढ़ सकते हैं, तो चलिए आते नबूवत सीरा की बुक है उसमें जाके आप यही मौजू खोलिए पढ़ के बताएं। यकीन करें सोने के पानी के साथ लिखने वाली है, जहाँ तक लिखा हुआ है कि अल्लाह के नबी ने क्या पकाया, बकरी पकाई, गोश्त किया, 3 सेर अनाज तैयार किया, दूध रखा। कहते हैं कि ये जो ख़ानदान के लोग थे ये बहुत खूब खाने वाले लोग थे, एक एक बंदा पूरी पूरी बकरी खा जाता था, और तकरीबन 40 लोग जमा हुए थे जिसमें से अल्लाह के नबी के चचा भी थे। और ये वही वक्त है कि जब अबू लहब ने झुटलाया लेकिन अबू तालिब ने कहा कि भतीजे जो करते हो करते जाओ मैं तुम्हारे साथ हूँ। किस तरह की मरहलों से गुजरे। आज हमारे गले की सबसे बड़ी फांस हमारा ख़ानदान है, झूठ के सच। और मैं सोचती हूँ कि जितनी मोहब्बत बंदे की फितरत में अपने ख़ानदान से होती है वो किसी और से नहीं होती। आप ज़मीन के किसी टुकड़े पर पहुँच जाए, 10-20 साल से किसी को ना मिले हों, जहाँ आपको कोई रिश्तेदार या उसकी कोई वजह से कोई चीज़ दिखेगी, एकदम आपके जहन में वो बचपन की सारी मोहब्बतें याद आती हैं। तो कितना अहम है अपने रिश्तेदारों तक इस बात को करना। और ये बात है कि हमारी नहीं सुनते तो अगर अल्लाह के नबी कहते पहली दफ़ा कहा नहीं सुनते तो बैठ जाते, फिर बोले और दोबारा वो सुन के गए। जी ये अपना कोई एक्सपीरियंस बताना चाहती हैं।
मैं अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। कुछ अर्से पहले मेरे दिल में भी यही तड़प है कि जो हम पढ़ रहे हैं हमारे रिश्तेदार भी पढ़ें, ठीक है कि सब माशाल्लाह की अपनी कोशिश करें, लेकिन कुरान जैसी खूबसूरत किताब हमें ज़रूर अब ज़िंदगी में पढ़नी चाहिए। तो इसी तरह दावत की और उन सबको बुलाया, क्योंकि घर था तो शायद सारे आए और अनएक्सपेक्टेड ही, उनको नहीं पता था कि क्या होना। मैंने सूरह मोमिनून की 10 आयतें शुरू की जो है उससे स्टार्ट किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह सब ने बैठ के सुना और एंड में यही कहा कि हाँ हम भी कुरान सीखना चाहते हैं। इसी तरह दूसरे हफ्ते में दावत थी तो मैं अपना लैपटॉप हर चीज़ तैयारी के साथ गई कि हम, और इस बात पर सब रजामंद थे कि हम सिर्फ ट्रांसलेशन जो है ज़रूर करेंगे और कोई फिक्की बात नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ ट्रांसलेशन पे बात जो है। जब मैं वहाँ गई और स्टार्ट करना था तो लोग इतना शोर सारे कर रहे थे और यही कहने लगे कि नहीं हम तो कहीं और कर रहे हैं, जिन्होंने कर रहे हैं वो आपके साथ कर लें, और वो उस कमरे में भी नहीं बैठ रहे थे मुस्तकिल अंदर बाहर, और इतना शोर उन्होंने किया। लेकिन माशाल्लाह कुछ चंद साथी थे जो साथ बैठे जिन्होंने सुना, तब मेरा सवाल ये है कि अब इसके आगे क्या स्टेप होना चाहिए।
देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या स्टेप लिया था उसके बाद, आप सूरह स्वात में फिर पढ़ेंगे ये वाक्या। अल्लाह ताला कहता है कि जब आपने बुलाया तो कुछ जो सरदार थे वो वहाँ से यूं तकब्बुर के मारे उठ के चले गए, रौनक थी। क्या किया था अल्लाह के नबी ने फिर इसके बाद? करते ही गए, करते ही गए, अपने दिल में दर्दमंदी लाए, खैर ख्वाह हों। देखिए हमारे रिश्तेदार हमारी बात क्यों नहीं सुनते अमूमन, एक वजह यह भी हो सकती है कि चूंकि हम बचपन से उनके साथ थे, उन्होंने हमारी बचपन की कई गलतियां देखी होंगी, वो हमें जानते थे, और जिसको हमारी जुबान में कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, ये सच है। अपने बात नहीं सुनते, लेकिन ये भी बात याद रखें कि अगर इन्हीं अपनों को आप अपनी मोहब्बत का यकीन दिला दें तो फ़र्क पड़ता है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक छोटा सा एक्सपीरियंस किया, अभी बहुत ही बेबी से एक्सपीरियंस है, आपको पता इसी सूरत के शुरू में आई थी लाला का बाख़ियन नफ्सा का, उस पे दिल में ख्याल आया और उसी दिन यहाँ बैठ के भी बात की थी। कह के आप एक फैमिली का ग्रुप बनाए। बिलीव में अपने मुसलसल बाहर के रहने की वजह से कई मेरी ऐसी कज़न्स और अपने साथी जिनको मैं कई सालों से नहीं मिली हुई, इन्होंने एक ग्रुप बनाया हमारे फैमिली के सारे लोगों का। और करते कराते किस्सा मुख्तर यह है कि अब इस वक्त वो ग्रुप, और उस ग्रुप का नाम हमने किस, क्योंकि वो चूँकि सारी इस तरफ की फैमिली थी ना, जो ननिहाल की फैमिली है, तो जो नाना का नाम है उसी नाम पे वो ग्रुप बना दिया आले फलान। इससे कुर्बत मिली, हर एक अपने अवजार है, किसी का नान दादा, किसी का नाना, किसी का बाप, किसी का चचा। वो देख के अब मेरा ख्याल है अराउंड उसमें 50+ लोग आ चुके हैं, इससे भी ज़्यादा है शायद, आई थिंक सो 50-60 के लोग हैं। उनको सबको जमा, अब उसमें वो ज़ाहिर है कि जब ऐड होते हैं तो वो नाम भी दिखते हैं। अब मुझे वो नाम देखे तो मेरी आंखों में चमक आ जाती है उनको देखे, अरे ये वो भी है। बिलीव मी के अमेरिका से लेकर पाकिस्तान, दुबई, हर जगह के वहाँ हमारी अपनी फैमिली के लोग आ गए हैं। खैर एक दो दिन तो वो सस्पेंस ही रहा, होना क्या है, करना क्या है, हमने कहा आप खेल लें जो करना है। अब उसके अंदर हल्का सा वो रूल्स थोड़ा सा उनको बता के 3 दिन हो गया, मैं आज तीसरा लेक्चर गया। 2 दिन में हमने कुरान का एक टॉपिक सिर्फ छोटा, और आपको पता है कि जो फाइलें बड़ी होती हैं ना, हम उसको स्क्वीज़ करके भेजते हैं, 64 MB की जो फाइल थी वो सिर्फ 7 MB में गई, क्योंकि ये व्हाट्सएप वगैरह फ़ोन ग्रुप जो होते हैं ना, ये इतना अफोर्ड नहीं करते। तो उनको ये भी तसल्ली देंगे इंशाल्लाह कि आप इसको रखेंगे भी तो आपकी मेमोरी फुल नहीं होगी। 2 दिन के बाद आज से हमने वहाँ सूरह फातिहा का भेजा है। मैं कहती हूँ कि अगर उस 100 लोगों में से अगर 30-40% भी लोग सुन के और फिर उनको बताए हाथ खड़ा करें, तो कोई सीधा हाथ खड़ा करता है, कोई उल्टा, मज़ा आता है। लेकिन वहाँ हम ग्रुप में किसी को कुछ कह नहीं सकते। एक थी तो उन्होंने 2 दफ़ा हाथ खड़ा किया, मुझे समझ नहीं कि 2 क्यों खड़ा किया, बाद में पता चला कि मैंने 2 दफ़ा सुना था, मैंने 2 हाथ खड़े किए हैं। लेकिन वो क्लोजनेस इतनी अच्छी फील होती है, और नज़रें क्या होती हैं, अच्छा फलां कज़न ने सुना है कि नहीं, हमारा दिल खिल जाता है कि ये सुन रहे हैं। और ये भी हमें पता है कि सुन के वो कमेंट्स क्या दे रहे होंगे। देखिए ना, आधे से ज़्यादा लोग हमसे बड़े और आधे से ज़्यादा लोग हमसे छोटे। तो कहने का मतलब है कि ख़ानदान ख़ानदान होता है, उसकी एक मोहब्बत है। और मैंने क्या सोचा, जब मैं वो देखती हूँ कि भाई किसने सुना, तो मैं सोचती हूँ कि चले इस ग्रुप बनाने से ये जो 15-20-25 लोगों ने सुन लिया अभी तक, इन्होंने तो नहीं सुनना था ना कि ये ग्रुप ना बनता, नहीं सुनना था ना। और सिर्फ 15-20 मिनट का क्लिप, दैट्स इट। उनको रूल सब तरीके बता, ये ऐसी सारों की क्लासेस शुरू हो रही हैं। सेम यही चीज़ आप अपने ख़ानदानों में शुरू कर सकते हैं कि जो आप यहाँ देख रहे हो उसी को पकड़ कर आप आगे अपने अपने ग्रुप्स में तरतीब ले लें। एक तरीका बताना होता है, मकसद तो ये है कि करें। थोड़े दिन गुजरेंगे इंशाल्लाह, इसमें अब हम लोग कोशिश करेंगे कि इस्माउल हुस्ना का शुरू कर दें। अगर ज़्यादा संजीदा लोग सामने आ गए तो फिर हम सबीलुल जन्ना भी शुरू कर देंगे। कितनी आसानी है। अब इसके बाद भी अगर हम नहीं सीखेंगे तो फिर क्या होगा, ये बताएं। और कब हम सीखेंगे? आप क्यों नहीं उनको मिलाते? आप समझते हैं कि कोई सुनता नहीं, आप जाके अकेले में उसके घर में रो पड़े कि तुम बताओ तुम्हें क्या है, मैं तो तुम्हारे लिए इतना तड़पती हूँ, तुम्हें क्या मसला है? यकीन करें, बाज़ दफ़ा आपके अल्फाज वो काम नहीं करते जो आपके 2 आंसू गिराते हैं। तो असल बात जो है ना, सारी बात का खुलासा, पहले अपने दिल में दर्द पैदा करें। अगर आपके दिल में दर्द नहीं है तो आप मेरे कहने पर ये काम कर भी लेंगे ना, तो कोई ऐसी बात बोल आएंगे कि वो उसका असर चला जाएगा। सबसे पहली चीज़ लाला का बाख़ नफ्सा का, खुद को ज़िबा करो, तड़पो, फिर आप देखेंगे कि इससे क्या फ़ायदा होगा। और हमेशा याद रखिए कि लोग लाइक माइंडेड लोगों में बैठ के खुशी फील करता है। आप इमेजिन करें जिस दिन आपको लगे कि आपका सारा ख़ानदान एक सोच पर, उसके बाद कोई मौका आता है मिलने का, तो वो क्या मौका होगा? वही खुशी होगी जो आपको कुरान की क्लास में होती है। तो बाकी दुनिया के काम तो सारे चलते रहते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जिस बात पर अल्लाह के नबी को अल्लाह ने रखा उस पर हमें भी अमल की तौफीक दें। हैं तो और भी बहुत ही खूबसूरत वाक़यात हैं, पढ़िएगा ज़रूर तजलियात नबूवत, बल्कि रहीकुल मख्तूम से भी पढ़ लीजिए तो आपको मिलेगा।